Om Shanti. 22 June 1977. जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ कि यह क्यों आया। इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो, क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास हो जाएंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, बाप का सुनाया हुआ सुनो, बाप ने जो दिया है वह देखो। इसी प्रैक्टिस से फुल पास होंगे, पेपर में पास होने की निशानी है आगे बढ़ना, अर्थात चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे, सर्व प्राप्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अच्छा, तो व्यक्त मुरली है 22 June 1977। बाबा कह रहे जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो क्या करो? घबराते क्यों है? पेपर जब होता है तो घबराते क्यों है? साइकोलॉजी में इसे कहते हैं टेस्ट एंजाइटी। टेस्ट एंजाइटी, लगभग 50% स्टूडेंट्स टेस्ट एंजाइटी से सफर करते हैं। एग्जाम से पहले या एग्जाम में एंजाइटी, बेचैनी, फियर, डर, उस पर बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है। वो रिसर्च जो हुई है वो स्थूल जो पेपर होते हैं स्टूडेंट्स के, उन पर हुई है। उसकी कारण क्या है, उसकी थियोरीज क्या क्या है, क्यों होती है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसकी दवाइयां क्या क्या हो सकती है, और कारण अनुसार क्या क्या इलाज हो सकता है, इस पर बहुत बड़े बड़े संशोधन हुए हैं। यहां बाबा कह रहे हैं कौन सा पेपर, यहां कौन से पेपर की बात चल रही है? जीवन में आने वाले पेपर, ब्राह्मण जीवन के पेपर। क्योंकि ये बहुत सुंदर एक बात है कि बाबा ने कहा कि जो परीक्षाएं हैं, इधर आ जाइए, जो परीक्षाएं हैं जीवन, जो परिस्थितियां हैं वो पेपर है। बाबा ने परिस्थितियों को पेपर कहा है। तो जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है, अर्थात क्या आता है, परिस्थिति आती है, तो क्या करो? घबराओ नहीं। तो हम बात कर रहे थे घबराने की। जब जीवन में परिस्थिति आ जाती है तो घबराते क्यों है? पार करने की क्षमता नहीं है, और अचानक पेपर आएगा, जो पेपर हमने कभी सोचा ही नहीं था। अचानक बीमारी, अचानक दोषारोपण, अचानक धोखा, अचानक विश्वासघात, अचानक कोई छोड़ के ही चला जाए, अचानक आर्थिक समस्या। अब सब कुछ था, दूसरे पल कुछ भी नहीं है। अचानक विरोध सबसे, अब तक जो साथ दे रहे थे अब एकदम विरोध में खड़े हैं। मित्र थे, शत्रु बन गए। अचानक बहुत जबरदस्त धक्का, जो कभी सोचा नहीं था। अचानक कुछ ऐसे देख लिया कि जो सोचा था ऐसा नहीं है, परंतु वास्तविक स्थिति कुछ और निकली। अपने विश्वास को धक्का आंतरिक, तो ये सब तो होगा। प्रश्न है, घबराते क्यों है? एक तो बताया क्षमता नहीं है, सोचा नहीं था, एक्सपेक्टेशंस जो थी उससे परे की चीज है, और वो एक ही हो गया। आदत है घबराने की, ये भी है, हैबिट है, डर की हैबिट, जो नुकसान होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है। और परिस्थिति की बताओ, अभी परिस्थिति आ गई तो घबराते क्यों है अचानक? इनसिक्योरिटी, सुरक्षा। उस समय बाबा याद नहीं है, और तो मतलब बाबा याद जो रहता है वो परिस्थितियां नहीं रहती है तब जो याद रहता है, क्या वो फिर वो वास्तविक याद है या वो याद भी एक भ्रम था? घबराते क्यों है सुधा माता? परिस्थितियों में घबराते क्यों है? पता नहीं क्यों हो जाए, ऐसा क्यों लगता है? क्या हो जाए, क्या हो जाए? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? किसी ने क्यों घबराते, वही पूछ रहे। वो तो ज्ञान तो है हमारे पास ना, हम तो आत्मा की अमरता का ज्ञान सुनाने वाले हैं। किस बात का, किस बात का भय? वास्तविकता का बहुत कम है, परिस्थितियों की गहराई में। कब जाएंगे गहराई में? जब आती है तब, जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं। धैर्यता कम है, तैयारी नहीं है, सामना करने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, और देहभान, ये उत्तर नहीं चाहिए। और हाँ, तो उसमें घबराते क्यों है, वही प्रश्न है। कुछ खोने का डर है हमारे पास, हमने बहुत पकड़ के रखा है, बहुत सारी चीजें पकड़ के रखी है, वो खोने का डर है। और घबराते क्यों है? अच्छा लगता है, ये तो कोई मानेगा नहीं। ज्ञान को यूज नहीं करते ना, वो ठीक है। और घबराते क्यों है विनोद भाई? परिस्थिति आ गई तो डर लगता है एकदम से, क्यों? असफलता, सबसे प्रमुख और मुख्य कारण है फियर ऑफ फेलियर। फेल हो गए तो, मेरी हार हो गई तो, मेरी इज्जत का क्या होगा ब्राह्मण परिवार में? लोग क्या कहेंगे? वादे तो बड़ी बड़ी करते थे, और खुद के जीवन में आ गया तो डर गए। और क्या कहेंगे लोग? और डरते क्यों है? डर का कारण क्या है?
शक्ति नहीं है,
वो हो गया। हाँ, निश्चय और आत्मविश्वास, और पाप के कारण, पाप डराता है। और अज्ञान, जिस चीज का अज्ञान है वहां डर लगता है, जिस चीज के बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं है वहां पर हमें डर लगता है, जिस चीज में जानकारी है वहां डर नहीं लगता है। जो व्यक्ति मुंबई कभी गया नहीं होगा उसको मुंबई का डर रहता है थोड़ा सा, लोकल्स का, क्या होगा पता नहीं, छूट गई तो, और लोकल ट्रेन में चढ़ गए और जहां उतरना है उतर नहीं दिया लोगों ने, तो क्योंकि उसका अनुभव कम है, इसके लिए डर रहता है। एक तो ये, और तो अज्ञान, जैसे वो दिखाया ना, एक व्यक्ति जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अंधेरी रात है, काली घटाटोप, अंधकार, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और भटक गया है जंगल में, जा रहा है कहां जा रहा है पता नहीं, और अचानक पैर फिसलता है, अचानक पैर फिसला और बड़ी मुश्किल से एक पेड़ की डाली मिली और उसको पकड़ लिया और बहुत जोरों से पकड़ा उसने। बस उसको लगा बच गया, ये डाली की वजह से बच गया। रात इतनी काली है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और फिर ठंड है, बहुत जबरदस्त ठंड है। पकड़ा रहा उसको, बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसको अगर छोड़ा तो गया, क्योंकि जबरदस्त नीचे देख रहा हूं तो पूरा खाली, बहुत बड़ी खाई दिखाई दे रही है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। पकड़ के रखा है पूरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात क्या है? पकड़ के रखा है और पूरे हाथ उसके नम हो रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। कड़कड़ 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 काट, पूरा शरीर उसका ये हो रहा है। रात भर पकड़े रहा पकड़े रहा पकड़े रहा पकड़े रहा पकड़े रहा, अब गया तब गया, पता नहीं क्या होगा। और धीरे धीरे सूरज उगता है और नीचे देखता है, बस 6 फुट नीचे जमीन थी, 6 इंच 6 इंच जमीन नीचे थी। तो जैसे कहीं ये बात दोनों चीजें लिखी है अलग अलग जगह पर, तो छोड़ता है और नीचे जमीन। तो इसके लिए कहते हैं फियर जो है वो केवल 6 इंच का है बस, उसकी जो लंबाई है ना बहेगी 6 इंच है। रात भर आराम से सो सकता था परंतु पकड़ के था और मृत्यु का भय, और सुबह देखा तो जमीन तो नीचे ही थी। वास्तविकता का अज्ञान ये कारण है भय। परिस्थिति जो आ रही ना, शायद हमने उस परिस्थितियों का स्टडी नहीं किया है, सोचा नहीं था, अनुमान हम कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। पहले सोचा था ये इनके जीवन में आ रही है, हमारे जीवन में थोड़ी आ रही है। जो उनके साथ हो रहा है ना, एक दिन तुम्हारे साथ भी हो सकता है। जो एक के साथ हो रहा है वो सबके साथ हो सकता है। इसके लिए ये कोई नहीं कर सकता है, ये गिर गया मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो बहुत अच्छा है सब। इसलिए जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ कि यह क्यों आया। सबसे पहला जो प्रश्न होता है क्या होता है मन में, यह क्यों मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? इतने लोग थे गाड़ी में, किसी को कोई नहीं हुआ, एक्सीडेंट हो गया, बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ, मेरा ही पैर क्यों टूटा, फ्रैक्चर मुझे ही क्यों हुआ? मैं ही क्यों, ये सब मेरे ही साथ हमेशा क्यों होता है? लोग मुझे ही क्यों बोलते हैं जबकि दोष उनका है? क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ कि यह क्यों हुआ, वाई मी। अंग्रेजी में किताब लिखी है, इतनी मोटी किताब है एक, मैं ही क्यों। इस सोचने में क्या होता है, टाइम वेस्ट मत करो, फिर क्या सोचे? मतलब दूसरों को कोई कुछ नहीं कहा और हमें सब बोलते रहेंगे, ऐसा ही होते रहे कितने दिन से सहन करें? हमको सिखाया जाता है कि जितना सहन करोगे उतनी मूर्ति अच्छी बनेगी, अरे पर कितना मूर्ति क्या चूरा चूरा हो रहा है, मूर्ति तो दूर। ऐसे ही सुनाया जाता है ना सेंटरों पर कि करो सहन तो मूर्ति अच्छी बनेगी। हमारा ही ज्यादा उठा एडवांटेज। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप, ये थियोरी तो बहुत ही अच्छी है दूसरों को सुनाने के लिए। तब क्लास चेंज होगा अर्थात पेपर में पास हो जाएंगे, पता नहीं कब पास होंगे, अभी पास चाहिए। ये अगर 10 साल का है क्या तो 10 साल तक सहन करते रहना। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, भगवान वाच, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, किसको देखते हुए नहीं देखो? जो जो हमारे साथ कर रहे हैं वो, जो सुना रहे हैं, जो सुना रहे हैं दूसरे विनोद भाई, उनको सुनते हुए भी क्या करो, फिर क्या करो, कान का क्या करे? कहते सुनाई तो दे रहा है, बहुत सुना रहे, सुनाने की उनको भी आदत है। एक साल में रोज टाइम पर जाते, एक ही दिन लेट गए तो किसी ने सुना दिया तुम हमेशा ही लेट आते हो, अब क्या करेंगे? बाप का सुनाया हुआ सुनो, बाप ने जो दिया है वह देखो। परंतु बाप ने जो सुनाया हुआ है वो याद भी तो रहना चाहिए उस समय। इस परिस्थिति के लिए बाबा ने क्या सुनाया, ये पॉइंट ही अगर याद नहीं तो वो वैसा ज्ञान याद है। देहवान में बताओ, आत्माभिमानी बनो, तुम्हें बाप संबंध बनना है, तुम्हें फॉलो फादर करना है, तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है, तुम्हें देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल बाप को याद करना है, सतयुग आया कि आया सबको सुजाग करना है, अखबारों में ये सब बातें पता है, पर इधर क्या करना है वो तो पता ही नहीं। बाप का सुनाया हुआ सुनो, किस परिस्थिति के लिए उसने क्या सुनाया है? सुनाया है परंतु हमने पकड़ा नहीं है, क्योंकि जो सुनाया इतना ज्यादा सुनाया है सागर की तरह। बाप ने जो दिया है वह देखो, दिया तो है पर रखा कहाँ है वो पता नहीं। इसी प्रैक्टिस से फुल पास होंगे। पेपर में पास होने की निशानी है आगे बढ़ना, अर्थात चढ़ती कला का अनुभव करेंगे, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे, सर्व प्राप्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अच्छा, 77 की मुरली है तो फिर से उसी प्रश्न पर आते हैं कि परिस्थितियां आई तो क्या करना है? सबसे पहले तो क्या क्या समझना है परिस्थितियों को, एक तो कहा यहां पर पेपर समझो और फिर उसका विस्तार किया, एक दूसरा है और क्या समझो, शिक्षक है पाठ पढ़ाने आई है, ये जो इवेंट, ये जो सर्कमस्टांस, ये जो सिचुएशन हुई है आई है, ऐसे नहीं आई है, अपने साथ एक बहुत बड़ा सबक, एक पाठ लेकर आई है और इससे मुझे सीखना है। यदि मैं इसे न सीखूं और ऐसे ही आगे चले जाऊं तो फिर तो कुछ फायदा नहीं। वो परिस्थिति आई है ना, तो उससे अब सीखो। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना यही है कि परिस्थिति आती है पर वो सीखता नहीं है। क्योंकि ये परिस्थिति आई है तो पाठ पढ़ना है, उससे सीखना है, कुछ तो सीखना है। अगर हमने न सीखा तो क्या, तो इसको बुद्धिमान नहीं कहे जाएंगे। द ओनली लेसन वी हैव लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी हैव नॉट लर्न एनी लेसन। आईएएस की किसी एग्जाम में ये ऐसे का टॉपिक था कि इतिहास से हमने एक ही चीज सीखी है और वो ये सीखा है कि हमने कुछ भी नहीं सीखा है। ये आईएएस की एग्जाम में टॉपिक आया है ऐसे राइटिंग में उनको, कि इतिहास में हमने, इतिहास जो हुआ इतना सारा, एक ही चीज सीखी है और वो ये सीखा है कि कुछ भी नहीं सीखा है, ये एक ही चैप्टर सीखा है। तो जीवन में जो कुछ भी आ रहा है, मिल्क द सिचुएशंस कहा जाता है, मिल्क अर्थात उनसे फायदा उठाओ और आगे बढ़ो, कुछ तो उनसे सीख लो, सबक लो। तो एक तो कहा पेपर समझना है जिसे पास करना है, दूसरा लेसन समझना है जिससे सबक लेना है और अनुभवी बनना है, तीसरा परिस्थिति को क्या समझना है। हिसाब किताब चुप तो हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलो आगे। नथिंग न्यू और चांस है, एक उनको अवसर समझना है, ये अवसर है स्वयं को शक्तिशाली बनाने का। किस लिए आई है? ये एक अवसर प्रदान कर रही है परिस्थिति। यदि ये परिस्थिति ना आती जीवन में तो, क्योंकि परिस्थिति आने के पहले का मैं, परिस्थिति के बाद का मैं, इसमें अंतर है हमेशा। उस परिस्थिति से गुजरने के बाद अभी जो मैं हूं वो थोड़ा शक्तिशाली हूं, वो थोड़ा और अनुभवी है, वो नहीं है जो पहले था। अ माइंड स्ट्रेच्ड बाय एन आइडिया नेवर रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज। मन उस रबर की तरह है जिसको अगर स्ट्रेच कर दिया तो वापस अपनी ओरिजिनल साइज वो गेन नहीं करता है। उसी तरह वो वाली बात नहीं कर रहे, तो ऐसा खींचो की तो अपना ओरिजिनल साइज रिगेन नहीं करता है. वैसे माइंड का भी स्वभाव है, एक नई आइडिया ने उसको अगर खींचा तो वो थोड़ा आगे बढ़ गया है. अब वो पुराना वाला नहीं है. एक बार सुनाया था ना, किसी ने चित्र भेजा था, एक हिरन है यहां पर, ठीक है, उसको एक तीर लगा है और घायल होकर नीचे गिर गया है. अब वही हिरन बूढ़ा हो गया है, दूसरा चित्र, बहुत सारे तीर लगे और खड़ा हुआ है. ये उसकी पहली अवस्था है. किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ गलत व्यवहार कर दिया, दुखी, उदास, नाराज, ग्रुप से बाहर, ये है एक अवस्था.
ग्रुप से बार बार बाहर करना
पड़ता है. उदास, नाराज, रूठना, रूसना, ये पहली अवस्था. एक तीर लगा उसको तो गिर गया. अब ये दूसरी मैच्योर्ड स्टेज है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आध्यात्मिक प्रगल्भता, आध्यात्मिक परिपक्वता. ये अवस्था में इतने तीर लगे हुए हैं उस हिरन को, खड़ा है, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब कुछ सहन करने की पावर आ गई है. हिरन, हिरन भव. तो परिस्थितियों को अवसर समझना है, ये क्या करने आई है, मुझे सिखाने आई है. और क्या करेंगे परिस्थितियों का, मैं बेस्ट एक्टर हूं. और सबसे डिफिकल्ट रोल किसको दिया जाएगा, जो पार कर सकते. वही कह रहे हैं कि एक मूवी बनने वाली है एक, ठीक है. अब डायरेक्टर को एक ऐसा एक्टर चुनना है जो बहुत, एक ऐसा उसमें पार्ट है कि जो टैलेंटेड एक्टर चाहिए, वही उस पार्ट को प्ले कर सकता है. बाकी तो छोटे मोटे सपोर्टिंग एक्टर्स तो कितने सारे हैं. कई सारे एक्टर्स में, कई सारी फिल्में ऐसी होती है कि जिसमें फीमेल, जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्ट्रेस है, पर उसमें वो मेल डोमिनेटेड फिल्म है जिसमें मेल का ही ज्यादा रोल है, फीमेल तो बीच बीच में आती है और चली जाती है. तो ऐसे इसमें वो टैलेंटेड एक्ट्रेस को वेस्ट नहीं करते डायरेक्टर्स, वो कोई भी छोटी मोटी एक्ट्रेस को ले लेते हैं. बड़ी बड़ी जो टैलेंटेड एक्ट्रेस है उनको उसमें नहीं लेते वो, क्योंकि वो जो मूवी है वो मेल बेस्ड मूवी है, एक्टर बेस्ड मूवी है. उसमें वो ऐसी कोई बड़ी एक्टर एक्ट्रेस होगी उसको नहीं लेंगे, कोई भी ले लेंगे. तो ये जो ड्रामा है इसमें ऐसा एक मेन पार्ट किसी को प्ले करना है कि जिसको सब कुछ ये करना है, और उसका पहले से लेकर लास्ट तक पार्ट है, और उसको हर परिस्थितियों को पास करना है. वो मेन एक्टर है उस ड्रामा का, तो ऐसे एक्टर को ही चुना जाएगा. तो ये जिसको अनुभवी बनना है जो, या उसको अवार्ड मिलना है, तो हम वो एक्टर्स है, इसलिए हमें चुना गया है. ये सोचना है कि मुझे चुना गया है क्योंकि मैं सपोर्टिंग एक्टर नहीं हूं, मेन एक्टर हूं इस फिल्म का. जो फिल्म का पोस्टर बनेगा उसमें मेरा फोटो है. इसके लिए परिस्थिति मुझे ज्यादा आएगी. ये नहीं सोचना, ये देखो आराम से सेवा करते हैं, सुबह जाते हैं, सेवा करते हैं, आराम से आते, कभी जीवन में परिस्थिति देखी नहीं इनके. पर जिनके जीवन में परिस्थिति नहीं, उनके जीवन में निखार भी नहीं, उनके जीवन में वो सौंदर्य भी नहीं. जिनके जीवन में परिस्थितियां हैं, हर पल प्रतिपल परिस्थितियां आ रही है, आ रही है, आ रही है, कितना उनको सिखा रही है और कितना आगे बढ़ रहे. और जो परिस्थिति उनके जीवन में आ रही है, बाद में एक समय आएगा कि वो शिक्षक बन के दूसरों को सिखाएंगे. जो जिनके जीवन में परिस्थिति आई है उनको कैसे, क्योंकि वो खुद गए हैं उसमें से. तो खुद हम अनुभवी बने हैं ना, हम उससे गुजरे हैं, तो हमारे पास कोई एक दिन आएगा तो हम उसको सिखा सकेंगे, हाँ हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ था, तो हमने ऐसा ऐसा किया था. कोई व्यक्ति है जिसका कभी किसी ने अपमान ही नहीं किया, वो क्या सिखाएगा कि निंदा, स्तुति, जय, पराजय, हानि, लाभ, स्थित प्रज्ञ योगी, ये कैसे सिखा पाएगा. और क्या समझना है परिस्थितियों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस ब्राह्मण जीवन में. गिफ्ट समझना है, क्या क्या सीख, क्या, क्या, ये भगवान की जैसे सौगात है, ये सौगात है. तूफान को तोहफा समझना, और क्या समझना परिस्थितियों को, लिफ्ट समझना, इस लिफ्ट में बैठो और चलो उड़ जाओ ऊपर, और क्या समझना? हाँ परछाई है, इससे अप्रभावित। कार्टून शो है, बाबा ने कहा है मिकी एंड माउस कार्टून शो, कागज का शेर, इससे थोड़ी ना हम प्रभावित होने वाले हैं। खेल है ये, एक समझना ये खेल है, और क्या समझना? इसमें गुप्त प्राप्ति है, इसमें सिवा क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। और वो हो गया, और क्या समझेंगे? कलप पहले में, ये कोई नया है ही नहीं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये, कलप पहले से शब्द हटा के थोड़ा सा दूसरा कर दो, कई जन्म या उससे भी दूसरा, कई बार, हजार बार या सौ बार मैंने इस परिस्थिति को पास किया, या दस बार, ये ग्यारहवीं बार है, इतना भी कलप मतलब वो थोड़ा माइंड ब्लैंक ही हो जाता है वहां पर। हाथ में कुछ सॉलिड आना चाहिए कि मैंने दस बार इसको पार किया है, दस बार, ये इलेवेंथ टाइम है, ये कोई अभी नहीं आ रही है, टेंथ दस बार हो चुकी है, ये ग्यारहवीं बार है, ये थोड़ा सा इसका नाम और रूप है थोड़ा, कल्प कल्प की विजय, ये ऐसा बाबा ने तो कहा है, परंतु उससे ये थोड़ा ठीक है। और बिट शल टू पास, वो कहानी सुनाई थी ना राजा की, उसके हाथ में वो अंगूठी में क्या लिखा रहता है, ये भी चला जाएगा, ये भी बीत जाएगा। तो कोई भी परिस्थिति कभी भी परमानेंट नहीं है, कोई भी परिस्थिति कभी भी परमानेंट है ही नहीं। जैसे वो एक गुरु होता है, उसके पास जैन बहुत सारे, जैन मास्टर के पास बहुत सारे शिष्य होते हैं, एक शिष्य आता है राजमहल से आया हुआ होता है, कहता है ये बहुत मेरे से होता नहीं है, क्योंकि उसमें बैठना बहुत होता है, मेरे पैर दुखते हैं, योग में बैठता हूँ मतलब मेडिटेशन में बैठता हूँ तो टांग दुखते हैं, पसीना आते हैं, मच्छर बहुत काटते हैं, क्या करूं, ये कोई कितना समय से कर रहा हूं मेडिटेशन, बट जैसे ही बैठते हो टांगों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, मच्छर यहां से आते हैं, फिर नींद आती है, क्या करूं? तो गुरु ने कहा चिंता की बात नहीं है, ये भी गुजर जाएगा, ये जो परिस्थिति, ये जो अवस्था है तुम्हारी मेडिटेशन की, गुजर जाएगी। फिर कुछ दिनों के बाद में बहुत प्रयत्न करता है और उसका एकदम अच्छा योगी बन जाता है, और गुरु के पास आता है कि अभी मैं बैठता हूं तो बिल्कुल टांगों में दर्द नहीं होता है, बिल्कुल नींद नहीं आती है, मेरा मेडिटेशन इतना अच्छे से होता है अभी, बहुत अच्छे से, मच्छर आते हैं परंतु मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गुरु कहता है चिंता मत करो, ये भी गुजर जाएगा। वो गुजर जाएगा तो ये भी गुजर जाएगा। जीवन में आने वाली कोई भी चीज, कोई भी, अभी बहुत महिमा हो रही है, बहुत महिमा हो रही है, वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया, तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं, तुम ही भगवान हो, यही कहने वाले एक दिन ग्लानी भी यही सबसे ज्यादा करेंगे, सबसे ज्यादा। इसके लिए वो लोग अच्छा है जो ना स्तुति करते ना निंदा करते, जो न्यूट्रल है, पर जो जितना ज्यादा स्तुति करता है खतरा उससे सबसे ज्यादा है, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी ना कोई स्तुति कर रहा है, बदला तो लेगा ना। कि ऐसे ही छोड़ देगा, इतनी तारीफ की कभी ना कभी तो कुछ करेगा। इसके लिए स्थित प्रज्ञ, जिसके पास अनुभव है वही दूसरों को सिखा सकता है, ये भी एक परिस्थितियों का फायदा है। और ये युद्ध का मैदान है, यू आर एट वॉर विथ माया, बाबा ने कहा लड़ाई पढ़ाई चढ़ाई, ये युद्ध का मैदान है, यहां तो लड़ाई करनी होती है। जिंकू किंवा मरू, युद्ध आमुचे पूर्ण करू, मरेंगे जिएंगे जो भी है, परंतु युद्ध को पूरा करेंगे, बीच से भाग कर नहीं आएंगे। और क्या चेंज, चेंज क्या, परिस्थिति चेंज हो जाएगी, हो गई। और नहीं नहीं, क्या करना है वो नहीं, क्या समझना है उसको, क्या समझना है उसको, परिस्थिति आ गई तो सबसे पहली जो चीज होती है, यहां बाबा ने कहा डरना नहीं है, डर इसलिए है क्योंकि उसका वास्तविक संपूर्ण ज्ञान नहीं है, वो इतनी डरावनी नहीं है जितनी हमें लग रही है, उसमें इतना पावर नहीं है, परंतु क्योंकि हमारे पास अज्ञान है इसलिए हम इतना ज्यादा डर रहे हैं उससे, उसके बारे में अपना नॉलेज बढ़ाना है, उस परिस्थिति के बारे में, इसी परिस्थिति को बाकी भाई बहनों ने कैसे फेस किया था। ये कोई एकदम नई तो नहीं है कि तुम्हारे जीवन में ही पहली बार आई है। हमको लगता है हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। चीजें सार्वजनिक है, हम व्यक्तिगत समझते हैं, सोचते हैं कि ऐसा आज तक किसी के जीवन में नहीं हुआ होगा। ऐसा नहीं है, कोई ना कोई तो इस संसार में है ही, चाहे इधर चाहे बाहर, जिसके साथ ये परिस्थिति आई थी। तो डरना नहीं है, प्रश्न नहीं पूछो, ये क्यों वो क्यों, कंप्लेंट नहीं करो। अब दूसरा प्रश्न है, क्या करना है फिर परिस्थिति में? एक बताया, शांत रहना है, सामना करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, आंख दिखाना है परिस्थिति को। और हाँ, पास करना है, ये लक्ष्य रखना है, ये पेपर है, कि ये एक छोटा सा संकल्प है कि ये जो परिस्थिति है ये पेपर है और मुझे इसमें पास होना है, बस खत्म। ये पेपर है, मुझे इसमें पास होना है, फिनिश।
पहले बाबा को बताना,
फिर वो टाइम पे और एक चीज होती है, परिस्थिति आती है तब बाबा से कनेक्शन टूट जाता है। यही परिस्थितियां ही समय है कि लोग क्या क्या करते हैं, यहाँ पर मुरली छोड़ देते हैं। परिस्थिति यही होती है कि सोचते सोचते, रात भर सोचते रहते, अमृत वेला छूट जाता है। बाकी टाइम पे करते हैं, अमृत वेला करेंगे, मुरली करेंगे, सब करेंगे, परंतु जब परिस्थिति आती है तब अमृत वेला छूटता है और तब मुरली छूटती है और फिर बाकी सारा दिन भर सोचते रहते हैं उसके बारे में, कैसे इस परिस्थिति को पार करें। उसके ऊपर मीटिंग करते हैं, चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं और ज्ञान योग छोड़ते हैं। यही पॉइंट है जहां पर ज्ञान योग को ज्यादा करना होता है। पर वहां ये सोचते हैं, ये ज्ञान योग से परिस्थिति कैसे दूर होगी। परिस्थिति का नेचर तो दूसरा है, ज्ञान योग तो हमको पता है, आत्मा समझ के बाप को याद करो। उसके चिंतन से ये दूर कैसे होगा, ये ज्यादा चिंतन चलता है। इसके लिए वो पीरियड में तो और ज्यादा बढ़ाना चाहिए,
खुद के अंदर शक्ति नहीं तो सहयोग भी
लेना। सहयोग लो, बाबा ने कहा है, दूसरी आत्माओं का सहयोग लो, जो अनुभवी है, जो योगी है, जो तपस्वी है, उनका सहयोग लो। और जिस पर विश्वास है वो भी कहा है बाबा ने। और क्या करो, इसलिए वो बता दिया, वो छोड़ना नहीं है उस समय। वो ही टाइम होता है कि जब व्यक्ति छोड़ देता है, जब परिस्थिति आती है सोचते एकांत में बैठ के इसके ऊपर चिंतन करेंगे, थोड़ा सा टाइम निकाल के, पर वो ही टाइम है जहां उसको बढ़ाना चाहिए। और योग का प्रयोग करना होता है उस समय, घबराना नहीं है, योग का प्रयोग करना है। और क्या करेंगे विनोद भाई, प्रकाश भाई, परिस्थिति आएगी तो क्या करना है आने के बाद? पहले तो एक तो होता है प्रिपेरेडनेसनेस, पहले अपने आप को तैयार रखना है, अपने आप को थोड़ा सा तैयार भी रखना होता है कि जिस मार्ग पे चल पड़े हो, ये मार्ग में बहुत कांटे है, कंटका अकीर्ण मार्ग है, ये बहुत कांटों से भरा हुआ मार्ग है। पहले तो वो कोर्स में बताया था ना, सहज राजयोग, ब्रैकेट में अतिशय, वो तो ब्रैकेट वाला तो दिखा नहीं था ना आपको, दिखा है नहीं आपको, तो आपने देखा क्यों नहीं, ब्रैकेट में भी कुछ दिखा था, ब्रैकेट में अग्निपथ पार्ट ऑफ लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट होती है ना, जिसमें एसिड टेस्ट होती है, लिटमस टेस्ट होती है, परीक्षा ही परीक्षा है, एक के बाद एक अग्नि परीक्षाओं से भरा मार्ग। कुछ नहीं ये ब्रैकेट में लिखा था, आपने पढ़ा ही नहीं और क्या समझेंगे परिस्थितियों में? रुक कर स्वचिंतन, आत्मचिंतन, डिसीजन जल्दी नहीं, हड़बड़ी नहीं करनी है। जल्दबाजी में किए हुए मैक्सिमम डिसीजन रॉन्ग ही होते हैं, क्रोध में लिए हुए और जल्दबाजी में लिए हुए। हिम्मत हारना नहीं है, नहीं वो दूसरी चीज है, हम वो वाली चीजों की बात नहीं कर रहे, वो तो इंस्टेंट डिसीजन वो अलग चीज है। यहाँ परिस्थिति खुशी खुशी से उसको पार करना, हाँ ये सबसे अच्छी बात है, खुशी खुशी से उसको पास करना है। जैसे दिखाया है जीसस क्राइस्ट के जीवन में, ये बात सूफियों ने लिखी है जीसस क्राइस्ट के बारे में। क्रिश्चियन इसे नहीं मानते क्योंकि ये कहानी जीसस सूफियों के बाइबल में है ही नहीं, परंतु सूफियों ने अपनी कहानियां बनाई है जीसस क्राइस्ट के बारे में कि ईसा मसीह ऐसा था और उसने ये किया अपने हिसाब से, जो क्रिश्चियन लोग उसे स्वीकार नहीं करते। दिखाया जीसस क्राइस्ट एक तरह एक जगह से जा रहा है, वहां पे बहुत सारे लोग दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है, रो रहे है। वो पूछता है क्यों रो रहे हो तुम लोग, वो कहते हैं क्या करें, हमें नरक से बचना है, कौन हमको नरक से बचाएंगे, हमें नरक का भय है। तो इसके वजह से ये एंजाइटी, ये दुख है, ये फियर है, उसके वजह से दुखी है। वो कहता है मैं यहां नहीं रुकूंगा, वो आगे जाता है। दूसरा ग्रुप मिलता है एक, वहां पे लोग बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। वो कहता है क्यों परेशान हो, वो कहते हमको स्वर्ग में जाना है, इसके लिए हम परेशान है, कैसे जाएंगे अगर नहीं गए तो, एंजाइटी है स्वर्ग में जाने की। वो कहता है मैं यहां पे भी नहीं रुकूंगा। तीसरी जगह पहुंचता है, लोग गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। वो कहते हैं क्यों गा रहे हो, नाच रहे हो, घूम रहे हो, झूम रहे हो। वो कहते हैं कुछ नहीं, कोई कारण नहीं है, अस्तित्व जो है भगवान जो है उसको धन्यवाद कर रहे बस। जीसस कहते हैं मैं यहां रुकूंगा, ये मेरे लिए रुकने की स्थान है, ये रुकने की जगह है, कि जहां पर लोग झूम रहे, गा रहे, नाच रहे, किस लिए, अकारण, किस लिए, केवल अस्तित्व को धन्यवाद दे रहे। जैसे दिखाया है एलिस इन वंडरलैंड, जो छोटी सी लड़की है, उसमें एलिस पहुंच जाती है एक स्वर्ग लोक में, और वहां जाकर एक मैड हैडर की पार्टी होती है। वहां जाती है वो खरगोश, मार्च हेयर एंड मैड हैडर, ये दो लोग दिखाए उसमें, सब काल्पनिक जगत में घुसती है वो। एक खरगोश का पीछा करते करते जाती है, खरगोश अपने बहन के साथ बैठी होती है, एक बार बोर होती रहती है तो एकदम उसके दिखाई देता है खरगोश जो कि हाथ में घड़ी पहने हुए है, और घड़ी पहने हुए वो बोल रहा है मुझे लेट हो रहा है, मेरे लेट हो रहा है। एलिस को लगता है ये कहां जा रहा है, मैं उसका पीछा करती हूँ, और वो खरगोश अपनी मांद में घुस जाता है, तो एलिस भी घुसती है और नीचे उतरती है तो एक स्वर्ग लोक में आ जाती है। यहां पर वो सारी अजीबो गरीब चीजें है, तो वहां पर उसमें एक प्रसंग है कि वो मैड हैटर की टी पार्टी में जाती है, वहां पर एक चाय की पार्टी होती रहती है, मैड हैटर और मार्च हेयर वो दो बैठे रहते हैं, मैड हैटर मतलब जो टोपी बेचने वाला एक व्यक्ति, और मार्च हेयर अर्थात खरगोश, और वहां एक छोटा सा चूहा भी होता है। तो वो देखती है ये लोग पार्टी कर रहे हैं और गीत गा रहे, अ वेरी अनबर्थडे पार्टी टू मी, अ वेरी अनबर्थडे पार्टी टू यू। वो कहती है ये कैसा गीत है, अनबर्थडे पार्टी, एक होता है बर्थडे, एक ये वो लोग मनाते रहते हैं अनबर्थडे पार्टी। तो वो वहां जाती है और बैठती है, वो कहती है तुम यहां क्यों बैठी, वो कहती है वो थोड़ा सा वार्तालाप है, संवाद दोनों में, बाद में एक है कि आप लोग, वो कहती है अच्छा आप लोगों का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो कहते हैं नहीं मेरा बर्थडे थोड़ी नहीं है, मेरा अनबर्थडे है। तो बोलती व्हाट अनबर्थडे, व्हाट इज अनबर्थडे। वो उसको समझाता है मैड हैटर, मैड हैटर उसको समझाता है कि साल में होते हैं 365 दिन, उसमें एक ही दिन बर्थडे होता है, बाकी जो 364 दिन है उसका क्या, उसकी हम पार्टी मना रहे हैं। तो वो हैरी मैं तो एलिस कहती है फिर तो मेरा भी अनबर्थडे पार्टी हो गया। तो फिर वो गीत है वहां पर, अ वेरी मेरी अनबर्थडे पार्टी टू यू, टू मी, यस टू यू, अ वेरी मेरी अनबर्थडे पार्टी टू यू, टू यू। वो कहती है टू मी, वो कहते हैं हाँ टू यू, और वो गोल घूम घूम के पार्टी करते हैं। ये बच्चों की कहानी है कि एक ही दिन बर्थडे नहीं मनाना है, एक दिन हैप्पी बर्थडे, बाकी दिन अनबर्थडे मनाना है, अनहैप्पी बर्थडे नहीं अनबर्थडे, अ वेरी मेरी अनबर्थडे टू मी, अ वेरी मेरी अनबर्थडे टू मी, यस टू यू, ऐसे गीत है एक। तो जॉय, रिजॉइसिंग विदाउट एनी रीजन, बस खुश है। क्यों खुश है, खुश रहने के लिए खुश है, ऐसे नहीं कि जीवन में इसने तारीफ कर दी तो खुश है, ये जीवन में अच्छी बात हो गई तो खुश है, परिस्थितियों का उससे कोई लेना देना नहीं है। लव फॉर द सेक ऑफ लव, हैप्पीनेस फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस, रिजॉइसिंग फॉर द सेक ऑफ रिजॉइसिंग, सेलिब्रेटिंग फॉर द सेक ऑफ सेलिब्रेशन, मनाना है, लाइफ मंथ मीन्स सेलिब्रेशन। ये अवस्था सर्वोच्च अवस्था है जीवन की। वो फिर दूसरी अवस्था है, अच्छा बात हुई तो खुश हो जाओ, खराब बात हुई तो दुखी हो जाओ, ये अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व अर्थात सेलिब्रेशन। सो अ मेरी वेरी अनबर्थडे पार्टी टू All of us. तो आज कौन सी पार्टी मनाएंगे सुधा माता, अनबर्थडे पार्टी, ठीक है, जिस दिन बर्थडे हो तो बर्थडे पार्टी मनाना, बाकी हर दिन अनबर्थडे पार्टी मनाना,
बस कुछ ना कुछ बनाना है।
अच्छा, ओम शांति।